ओम शांति। मुरली रिवाइज डेट है 26/12/84, जो कि कल संडे को रिपीट हुई द्वारा। तो इसमें जो विशेष चुने हुए महावाक्य हैं, ज्वाला स्वरूप याद के, लाइट हाउस मैट हाउस स्थिति के, हर ब्राह्मण की यही इच्छा होती है हमारी स्थिति हमेशा कैसी रहे, ज्वाला स्वरूप, लाइट हाउस माइट हाउस। तो इसमें अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, 14 पैराग्राफ हैं, तो उसमें हमको दो पर ही प्रकाश डालना है, बाकी और डालेंगे प्रकाश। तो बहुत सारी बातें इसमें बाबा ने बताई हैं, अलग अलग मुरलियों से चयन किया गया है इन महावाक्यों का। तो बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप याद अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, बीज रूप स्थिति, इसी पुरुषार्थ में लगे रहो। और इस पुरुषार्थ की युक्ति बताई बाबा ने, ये पुरुषार्थ की उपलब्धि कैसे होगी और अगर वो पुरुषार्थ करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा और उस परिणाम से अन्य आत्माओं को क्या फायदा होगा, और उसके लिए दो एग्जाम्पल भी दिए बाबा ने। तो ये दो पैराग्राफ थे। तो उसमें जो पहले पैराग्राफ में बताया, अगर हमेशा स्थिति हमारी लाइट हाउस माइट हाउस बनी रहे तो उसके लिए बाबा ने कहा कि विशेष रूप से ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, ज्ञान नहीं है तो अंधकार है। अंधकार माना दुख, अंधकार माना दर्द, अंधकार माना अंदर में गिल्ट कॉन्शियस, निराशा। तो ज्ञान एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो हमेशा हमें प्रकाशित करती रहेगी। लाइट हाउस कोई देखने में तो नहीं आएगा, ये हमारी स्थिति है। तो जितना हम ज्ञान के विशेष अनुभवी बनते जाएंगे, हर पॉइंट को स्वरूप में लाते जाएंगे, तो हमारी स्थिति नेचुरली ऑटोमेटिकली लाइट हाउस समान होती जाएगी। और उसके परिणाम स्वरूप बाबा ने उसमें तीन बातें बताई, अगर हमारे निरंतर मन ज्ञान की स्मृति में है, कोई ना कोई ज्ञान का बिंदु हमारी स्मृति में चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसके तीन फायदे होंगे जो कि हमें सेवा के लिए बहुत सहायक होंगे वो। और वो है, सबसे पहले हमारी वृत्ति बदल जाएगी, ज्ञान से वृत्ति शुभ हो जाएगी, शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति जागृत होगी। फिर दूसरी है कल्याण की वृत्ति हो जाएगी, और तीसरा है उससे वातावरण शक्तिशाली बन जाएगा। तो ये लाइट हाउस माइट हाउस अर्थात ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए विशेष रूप से ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो, तो उससे वृत्ति शुभ हो जाएगी, कल्याण की वृत्ति हो जाएगी, और तीसरा वातावरण शुभ हो जाएगा। अब इन तीन बातों के हमारे जीवन में आने से उसमें दूसरों को फायदा होगा, और उसमें विशेष रूप से जो बाबा कहते आत्माएं तड़फ रही हैं, भटक रही हैं, जो दुखी हैं, उन आत्माओं को सुख शांति आनंद दे सकेंगे। जैसे आज की मुरली में बाबा ने दो वरदान दिए, कौन से आज की मुरली में, नहीं सुख शांति के, क्वेश्चन आंसर है। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को दो वरदान देता हूं, सुख और शांति के वरदान। तो वो वरदान कब मिलेंगे, उसमें बाबा ने प्रेस बताया, जब तुम जर्म हुई जग मुही नहीं करेंगे, व्यर्थ से किनारा करेंगे, हाँ जी, मुख में मुलरा डाल देंगे, तो सुख शांति के वरदान मिल जाएंगे। तो ये ज्ञान का हर पॉइंट जो हमको शक्तिशाली बनाता है, अनुभवी बनाता है। और तो ये तीन बातें हो जाएंगी। सबसे पहली बात बताई कि विशेष के ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो ज्ञान स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनेंगे, हर पॉइंट के जैसे मास्टरी हो जाए। तो उसकी तीन बातें, एक तो शुभ वृत्ति हो जाएगी, कल्याण की वृत्ति, और तीसरा वातावरण शक्तिशाली हो जाएगा। और वातावरण शक्तिशाली मधुबन में है तो कैसे आकर्षित होते हैं, ऐसे हमारा घर ही मधुबन हो जाए, जिस भी क्षेत्र पर हम रहते हैं वो ही ऐसा शक्तिशाली वातावरण हो जाए, तो दूसरों को स्वतः अनुभूति होगी। कौन कौन सी, सुख शांति शक्ति प्रेम की, जो अन्य आत्माएं तड़फ रही है भटक रही है, जिसकी वो चाहना रखती है। इसके लिए बाबा ने दो एग्जाम्पल दिए। फिर जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालते तो क्या होता है, परिवर्तन हो जाती है, उसका नाम रूप रंग रूप सब बदल जाता है ना। ऐसे भी देखो, रावण की अग्नि भी है और बाप की भी अग्नि है, बाबा की है योग की अग्नि, और रावण की है कौन सी, विकारों की अग्नि। मनुष्य जब शादी करता है तो उसके बाद उसका नाम भी बदल जाता है, अधिकतर कई युग जाता है, फिर धीरे धीरे वो भी बदल जाता है। कोई भी तो है तो मनुष्य ही, तो उसका नाम भी रूप भी बदल जाता है, फिर अंत में 12 बज जाते हैं उसके, तारा टोटली बदल जाता है। तो ऐसे हमारे अगर बाबा के साथ हमारा योग लगा रहे तो हमारा नाम तो बदल गया ब्रह्मा कुमार, रूप भी धीरे धीरे बदलता जाएगा, रूहानियत आती जाएगी जीवन में, और फिर विकारों के 12 बज जाएंगे हम, अर्थात हम बिंदु रूप बन जाएंगे। तो इसमें फिर बाबा ने बताया जैसे कच्ची मिट्टी को, कच्ची ईंट नहीं, कच्ची मिट्टी को सांची में डालते हैं, कच्ची ईंट मान लो, फिर वो पक्की हो जाती है और पक्की ईंट फिर काम में आती है। ऐसे तुम बच्चे भी हर परिस्थिति में शक्तिशाली तब बनेंगे जब हमेशा सांचे में डले रहेंगे, अर्थात बाप की याद में निरंतर रहेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसके लिए हमको कुछ बातों पर विशेष रूप से अटेंशन रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, और वो हर एक ब्राह्मण आत्मा में है और संसार में भी होती है। कोई भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति रखने की हमको संपूर्ण बनना ही है, और ये तो है ही है। और उसको दृढ़ इच्छा शक्ति, और हमारी दृढ़ कैसे होगी, इच्छा शक्ति तो है लेकिन उस पर दृढ़ता का ठप्पा लग जाए कैसे होगा, वो बार बार रिवाइज करने से, उसका अभ्यास करने से, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। धीरे धीरे फास्ट स्पीड से नहीं चल रहे तो धीरे धीरे चले कम से कम। तो धीरे धीरे जैसे हमारी आदत पड़ती जाएगी तो इच्छा शक्ति हमारी और दृढ़ होती जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलना शुरू होगा, और बाबा की भी हमारे ऊपर नजर रहेगी, उसकी आशीर्वाद रहेगी, कृपा रहेगी, तो हमें आगे बढ़ने की महसूसता होगी और स्वयं के जीवन में हमको परिवर्तन का अनुभव होगा कि जो हम पहले थे वो अब नहीं है, जो शुरुआत में थे वो अब नहीं है। कुछ तो अचीवमेंट मिली है ना, कुछ तो ऊपर वाले की हमारे ऊपर नजर है ही ना, कुछ तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और फिर दूसरा है ज्ञान के प्रति हमारा थोड़ा लगाव बढ़ना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। योग से भी पहले पढ़ाई जरूरी है, बिना पढ़ाई के योग भी ठीक से नहीं लगेगा, नहीं तो खाली बैठे रहेंगे, बैठते समय भी तो हमारी बुद्धि चलनी चाहिए ना। तो सोर्स ऑफ इनकम ये पढ़ाई है, पढ़ाई इसको हम पढ़ना है, सुनना है, लिखना है, सुनाना है, ये पढ़ाई की फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पढ़ाई के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, पढ़ाई क्या क्या चीज है, पढ़ाई हम पढ़ाई से हमें क्या फायदा हुआ और नुकसान क्या हुआ, जो नहीं पढ़े तो पढ़ाई पढ़ने से नुकसान क्या हुआ नहीं पढ़ने से। तो दूसरा है ज्ञान, ज्ञान से हमारा लगाव बढ़ता जाना चाहिए। तीसरा है अधिकतर हम सबका जो कर्म क्षेत्र पर ज्यादा टाइम का पीरियड होता है, सवेरे शाम तो हमारा योग का थोड़ा टाइम होता है, कईयों का निकल पाता है, घरों में कईयों का नहीं निकल पाता है। तो कर्म क्षेत्र में हमारा समय का दायरा बहुत बड़ा है, उसको हमें चेक करना है, जांच करनी है, कहां कहां हमारा पहले समय वेस्ट जा रहा है, वो समय की बचत करनी है। तो पहले समय को देखना है, उस समय को हम कहां सफल कर सकते हैं, उस समय को बचाकर जो हमारा व्यर्थ में जा रहा है, तो पहले समय की एक सूची तैयार करनी है कि कहां कहां हमारा समय जा रहा है। तो संबंधों में फिर जो कर्म क्षेत्र पर है, कर्म क्षेत्र जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो उसमें हमारा अगर हमें स्मृति है कि हमें व्यर्थ में नहीं जाना है, तो फिर उन संबंधों में भी हम दूसरों से दुआएं इकट्ठी करने की हमें आदत पड़ जाएगी, क्योंकि संबंधों में तो आना ही है, सबसे किनारा कर नहीं पाएंगे, घरों में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, अगर किनारा किया तो और ही आपस में टकराव, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव की भावना आएगी या एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना आएगी, और अधिकतर तो हमारे हिसाब किताब तो है ही ना, हिसाब किताब को छोड़ के तो जा नहीं सकते कहीं भी, भुगतना तो वही है। तो संबंध संपर्क का जो हमारा दायरा है उसमें हमको दुआएं करने का एक जैसे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वो तो उसको छोड़ना नहीं है, उसमें हम सबको दुआएं अर्जित करने का तरीका खुद ही ढूंढना है। हर एक की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनके सुखों को पूर्ण करने में अपना टाइम बिकवा दें, वहां भी हमको ये थोड़ी सी समझ तो चाहिए नहीं कि कौन से उनकी अपेक्षा पूर्ण करनी है कौन सी नहीं करनी है। वास्तव में सब आत्माएं चाहती तो सुख शांति है, जो बाबा ने आज की मुरली में कहा और बताया कि जो भटकती तड़फती हुई आत्माएं हैं, तो संसार में तो हर आत्मा तड़फ रही है, भले शरीर नहीं छोड़ा लेकिन शरीर में रहते हुए तो भटक रही है ना, मन बुद्धि तो भटक रहा है इधर उधर ही, तो उनको भी सुख शांति चाहिए। तो हमको संबंधों में समरसता लाने के लिए स्वयं ही हमको जो हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है उस टाइम को हम सेव करके उस टाइम में हम छोटे छोटे ज्ञान या योग के थोड़े अभ्यास करें, है ना, जैसे छोटे छोटे साकाश दें, लंबा नहीं, किस्तों में या टुकड़ों टुकड़ों में सरकार देने का, एस इंस्टॉलमेंट में। ऐसा नहीं हमको सोचना कि वो दो घंटा बैठ जाने तो दो घंटा पूरा यार, नहीं होता घरों में ऐसे, है ना। विशेष अगर यहां भी आप दो घंटा पूरा योग में बैठ जाओ तो दो घंटा मन काबू में थोड़ा रहता है, कहीं ना कहीं जाएगा इधर उधर, तो पांच पांच मिनट, दो दो मिनट, चार चार मिनट करना है, तो हमारा समय जो बढ़ता जाएगा और उसका परिणाम हमारा वातावरण शक्तिशाली हो जाएगा। बाबा ने कहा कि ज्ञान स्वरूप के अनुभव में तो वातावरण शक्तिशाली होगा और हमारी वृत्ति भी बदलती जाएगी, क्योंकि स्वयं के अंदर ही हमारा परिवर्तन जब होगा, स्वयं के अंदर ही, स्वयं के प्रति पहले सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। स्वयं के प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है तो संबंधों में कसम के चलते लड़ाई झगड़ा चलता है। तो ये समय की बच्चे देखनी है कहाँ कहाँ जा रहा है, फिर संबंधों में समरसता बढ़ानी है, और कहीं ना कहीं फिर हमको जो भी कर्म क्षेत्र है या हम सेवा करते हैं तो उस सेवा में योग को शामिल करना है। हाँ, ये है बड़ी मंजिल, आज के मूल्य में है ऊंची मंजिल, बड़ी मंजिल है कौन सी, कर्म करते हुए सेवा में योग को शामिल कर देना, योग में सेवा को। ऐसा नहीं करना योग में बैठे तो सेवा याद आ रही है, उल्टा हो जाएगा काम। हमको अभी सेवा में योग को शामिल करना है, क्योंकि समय बाबा ने कहा अंत में तुम बच्चों को समय नहीं मिलेगा, तो इस समय जो भी हम सेवा करते हैं उस सेवा के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा हुआ कि सेवा करते समय हमारी निरंतर याद रहे, उसके लिए बाबा ने क्या क्या महावाक्य कहे हुए, तो हम उसको खुद को चुनना है कि कौन सा भाव, जैसे निमित्त भावन कर सेवा करें, तो क्या हमारे उस समय निमित्त भावन कर सेवा कर रहे हैं हम, या कोई दूसरा ही भाव है, स्वार्थ वाला भाव है, या काम चलाऊ है, काम पूरा करने का ही है, कर्ण करावन बाबा हमारे से करा रहा है ना। तो सेवा में निमित्त भाव, क्योंकि सेवा का क्षेत्र हमारा बड़ा है, तो उसमें भी थोड़ा हमको ये अटेंशन देने की जरूरत है। याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ, लेकिन इसको हम खाली अगर इसी पॉइंट को ले लेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि खाली याद में बैठ जाएंगे तो सब कुछ समाया ऐसा नहीं है, कर्म करते याद में तो कुछ तो अपना भी जोड़ना पड़ेगा ना, ये मान मत नहीं है बाबा के मावा के ही। तो याद की यात्रा में भी हमको देखना है कहाँ कहाँ याद को हम उसमें मिश्रित कर दें, क्योंकि याद तो हमारी नेचुरल है ना, याद तो किसी न किसी की तो बनी रहती है, बाबा की नहीं रहे तो दूसरे किसी की रहेगी, पत्नी बच्चों की रहेगी या किसी की रहेगी, जिसकी पत्नी होगी उसको पत्नी की रहेगी, और बच्चे होंगे या घर में कर्म क्षेत्र जो भी होगा ऑफिस होगा उसको याद, याद तो रहती है, दुश्मन होगा किसी का उसकी याद रहेगी, बोलता ही नहीं, तो इसी तरह वही संबंध जो बोलते हैं ना वही सारे संबंध बाबा से जोड़ने हैं। तो हमको कर्म क्षेत्र पर याद की यात्रा ही बड़ी मंजिल है, तो उसकी याद की यात्रा को सेवा की यात्रा में मिक्स कर देना, क्योंकि याद की यात्रा शक्तिशाली है तो हमारी सेवा भी फिर शक्तिशाली हो जाएगी। तो ये थी कुछ एक बातें, अभी और प्रकाश डालेंगे सुखदेव भाई। ओम शांति।
ओम शांति। दो पैराग्राफ थे आज, पहली बार का भी पॉइंट निकाले, तो पांच पॉइंट निकाली है। पहली थी उसमें जमा का खाता, तो खाता जमा का खाता बढ़ाओ, बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ाओ, तो कैसे बढ़ाएंगे, आप लोग कुछ बताएंगे तो हम बढ़ाएंगे। पहले ज्ञान के आधार पे, कभी कभी हमें लगता है कि मूल्य चल रही है और हम समझते जा रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जो टपारी खुशी अंदर थी वो बाहर क्या हो जाता है, तो सब अपने डायरी निकालेंगे और पेन लेंगे, एक प्रश्न है, प्रश्न पहले लिख लेंगे, एक मिनट का टाइम देंगे हम, ठीक है, पहले से। हाँ, जिनके पास मोबाइल है वो नोटपैड खोल सकते हैं। पहला हम प्रश्न बोल रहे हैं, एक मिनट एक डंडा, एक मिनट एक डंडा, पहले आपको टारगेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट हम देंगे, हम बोलेंगे स्टार्ट और स्टॉप, तो आपको डंडे खींचते जाने बस, ठीक है, डंडे खींचते जाने ऐसे 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 एक मिनट तक, ठीक है, एक वन 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 बता, तो मैं आप लिख लीजिए पहले टारगेट, कि आप कितने डंडे खींच पाएंगे एक मिनट में। लिख लिया, समझ में आया ना क्या बोला मैंने? हाँ, आप इधर से स्टार्ट कर देना, ये स्टॉप भी कर देना, नहीं तो पूरी क्लास में डंडे ही बस खींच जाए। स्टॉप। अब टारगेट दिया था ना, सब सबने टारगेट लिखा था ना, कितने खींचवाएं, काउंट करें, सब अपने काउंट करें, सब अपने जो टारगेट दिया था। हाँ, टारगेट से कितना गुना होगा लगभग? टारगेट रखना था ऐसा ही, ये ज्ञान भी ऐसा ही है। तो ये भी भ्रम है, आत्मा की पावर जानना, कि आत्मा हमने समझ लिया बिंदु है। ये बहुत पहले हमारे टीचर ने लिया था स्कूल टाइम में, बताने के लिए कि आपकी पावर जो है मन की क्षमता वो ज्यादा है। तो जमा का खाता हम समझ लेते हैं कि योग कर रहा है, ज्ञान सुन रहा है, सेवा कर रहा है, दुआएं दे रहा है लोगों को, ये जमा का खाता बढ़ रहा है, भ्रम है। मधुबन में एक दिन रहने का जो दर का होटल का चार्ज है 4500 रुपए, 4500 रुपए वन नाइट स्टे विदाउट एनी डिनर और लंच। और हम सेवा कर रहे जिस डिपार्टमेंट में, वहां से उधर से ले रहे, कर कुछ नहीं रहे। ऐसे बाबा ज्ञान दे रहा और हम इसी उसमें लगे हैं कि विनाश होगा, विनाश होगा, ये भूल है, विनाश चल रहा है। एक भी मिनट आपने वेस्ट किया तो क्या उस टाइम का विनाश नहीं हुआ? एक भी आपने अच्छा कर्म किया तो क्या वो सफल नहीं हुआ? तो प्लस माइनस दोनों चल रहा है। अब काउंट अपन को करना है कि जमा कितना किया और खर्च कितना किया। एक सेंटर हम डेली जाते थे साइकिल से, एक माता को देखा, डेली पैदल आती थी, जबकि साधन थे उनके दर से ऑटो रिक्शा चलते थे। तो एक दिन हमने ऐसे पूछ लिया, माता जी आप पैदल क्यों आते हो, 5 रुपए लगता है चार्ज। बोले हम जो काम करते हैं वो अगरबत्ती बनाती थी तो सैकड़े के हिसाब से मिलता था पैसा, 7 रुपए सैकड़े, ऐसा बताया उन्होंने। एक दिन में करीबन वो 70 रुपए या 60 रुपए का काम करते थे। बोले हम दिन भर मेहनत करते हैं, 60-70 रुपए कमाते हैं और 5 रुपए अगर हम बाबा की भंडारी में वही किराया बचा कर डाल दें तो क्या हमारा हिसाब नहीं बढ़ेगा? तो वो बात हमको इतनी घर कर गई कि उस दिन से हमने फिर, पहले जाते थे बाबा कमरे में, लाइट चालू कर लिया अकेले के लिए, फैन चालू कर लिया, कहीं छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हैं बहुत गहरी, लोग सिखा देते हैं हमको, अपने अनुभव से लोगों ने सिखाया है, हमने कोई कोर्स वोर्स तो किया नहीं, लोगों के अनुभव से ही सीखे हैं। तो उस दिन से थोड़ा इकोनॉमी को समझा कि क्या है इकोनॉमी। उस व्यक्ति से पूछो जो जन्म से गूंगा रहा हो, जन्म से गूंगा रहा हो और एक दिन मंदिर गया वो और उसको जवान आ गई हो, तो उसकी खुशी क्या दूसरा व्यक्ति फील कर सकता है? एक लंगड़ा व्यक्ति जाए उसको पैर मिल जाए, एक बहरा व्यक्ति जाए उसको कान में सुनाई देने लगे, गूंगा व्यक्ति बोलना लगे, ये बहुत बड़ी प्राप्ति। और ये सारी पावर हम जब मुरली पढ़े ना, तो जितने बार आप पढ़ोगे मुरली उतने बार गहराइयों में गोते लगाओगे। जमा का खाता समझना बहुत वो है। अब हम किसी को ज्ञान सुनाने जाते हैं, ज्ञान सुनाना है तो हम ब्लैंक चेक बांट रहे किसी को, खुद जमा नहीं किया, किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं है और उसने चेक बांटा और वो व्यक्ति अगर बैंक गया तो क्या हाल होगा उसका? जेल। ऐसा ही ज्ञान है, हमने धारण नहीं किया जीवन में और बांट रहे ट्रेन में जबरदस्ती दे रहे लोगों को, ले लो बहुत है हमारे पास, वो धारण नहीं किया जीवन में तो लास्ट में उसका हिसाब होगा। बांटने से एक बहन बताता हूं, एक कोर्स कराई, एक बहन ने कोर्स कराया एक भाई को कोर्स कराया, व्हाट्सएप से माया तुम कल से चलाने नहीं, छोड़ देना सारी चीजें। बहन जी ने कोर्स कराया इसको, यूट्यूब फेसबुक सब बंद कल से। मैं थोड़ा वहीं था साइड में कुछ कर रहा था, बता रही थी बहन अब और जो चीजें डर रहा है तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा कभी, ये भी सिखा रही थी बहन जी। अब एक दिन क्या हुआ कि बहन जी का डेटा खत्म हो गया और वो व्यक्ति मोबाइल की दुकान थी उसकी, और रात को 12 बजे उसको फोन किया कि भाई मेरा डेटा खत्म हो गया, बहुत अर्जेंट है, व्हाट्सएप चालू करना है। तो जी तो उसको उसने बताया हमसे कि क्या है, फिर धारणा स्वरूप होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम सेवा में इतना बिजी चले जाते हैं, अभी प्रोग्राम हुआ था 7 महीने पहले, दादी को बुलाया था, रतन मोहिनी दादी को, जबलपुर की बात है, 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ और एक आत्मा सिर्फ कोर्स करने आई। तो हमारे कर्मों से किसी एक आत्मा अगर इस ब्राह्मण परिवार से जाती है तो भगवान भी कई आत्मों को पैसा खर्च करके भी लाया है इस यज्ञ में। ये भूल है हमारी कि सब आसानी से आ गए। भक्ति में जितने खर्चे आपने पैसे किए हैं ना घूम घूम के, भगवान भी आपको खर्च करके ला रहा है। ये मत सोचें आप कि फ्री में आ गए, आपने काशी करवट खाए हैं, फोकट में नहीं आए हैं। ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ जमा का खाता ये नहीं है कि पैसे से कंपैरिजन हो, लेकिन जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें याद समाई हो। और फिर दूसरी चीज ये आ जाती है, ज्ञान में आने के बाद नशा एक VIP का बहुत बड़ा हैवी हो जाता है। कोई ज्ञान सुना रहा था एक बार, हमको वो ज्ञान मिल गया कि अब बिल गेट्स भी हमारे सामने कुछ नहीं है। तो उस नॉर्मल व्यक्ति था वो जो सुना रहा था, शायद उसको बिल गेट्स के बारे में भी पता नहीं था, और जिसको सुना रहा था उसको पता था बिल गेट्स के बारे में, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता था वो। तो उसने बताया, आपको पता है बिल गेट्स की इनकम कितनी है? 1 सेकेंड में 12,000 रुपये। और आप कहते हो कि उसके उससे भी ज्यादा कमाई आप करते हो, कैसे? उसका 24 घंटे का शेड्यूल आपको पता है क्या? बोले नहीं पता। कैसे आप उस व्यक्ति को आप कह सकते हो? तो अज्ञान काल में भी, इस युग में भी ऐसी ऐसी लोग विभूति हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हम उनके ज्ञान में आके बाप बन गए। लेकिन यहां बाबा ने पद्मों की कमाई कही है, वो शायद 12,000 कुछ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटे कमा रहा है, 1 सेकंड में 12,000 रुपए इनकम कर रहा है, तो उसमें मल्टीप्लाई 21 कर दो और उतनी कमाई ब्राह्मण की होनी चाहिए। वो स्थूल धन की बात नहीं है। ज्ञान को समझकर गहराई से चलकर फिर उसको धारण करें। ऊपर से समझ लिया, भगवान मिल गया, इतना नशा है हर जगह भगवान ठोंक देते हैं जबरदस्ती किसी को भी। एक ही पॉइंट हुआ, ठीक है, जमा का खाते में क्लियर करते हैं, आगे पहुंचते हैं। उसके बाद था सहज पुरुषार्थ। सहज पुरुषार्थ खाया पिया और सो गए आराम से, सहज पुरुषार्थ, ठीक है। इसके बारे में आप लोग सोचें, सहज बाबा ने इसमें बताया सहज पुरुषार्थ में दो बातें बोली कि हमको भी जाने की तैयारी करनी है और कुछ साथ ले जाने में भी तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी करनी है? बैग बैग तैयार करना है, लगाना है, साड़ियों के अंबार लगाने हैं, जूतों की दुकान लगानी है, ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करनी है, क्या यही तैयारी है जाने की? क्या तैयारी है? दिन भर एक व्यक्ति को मैंने देखा कि वो एक करीबन 15 दिन से एक पीतल का लोटा ऑनलाइन चेक कर रहा है, 1 महीने से। वो सिर्फ 20-25 का डिफरेंस है, वो सारी साइटें खोल डाला, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, एमेजोन, कहाँ कहाँ ढूंढता है, कौन कौन से स्नैपडील, कहीं कम कहीं कहाँ ऑफर चल रहा। बोली 15 दिन बाद ऑफर आएगा, 15 दिन बाद ऑफर आएगा, 15 दिन इंतजार करा, फिर सर्च चालू हो गया, घाटा कुछ नहीं। उनने उधर पे मार्जिन कम करके शिपिंग चार्ज ऐड कर दिया, जब वो परचेस करने गया अरे शिपिंग चार्ज बढ़ गया। तो बहुत टाइम का मैनेजमेंट इस जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला टाइम नहीं हो गया, ठीक है, अगला है फास्ट लेते हैं। तीसरा सर्वसंबंध, सर्वसंबंध एक बाप से रखने, और इसके और अगला है चौथा प्राकृतिक के आकर्षण, प्राकृतिक के आकर्षण। इसमें थोड़ा हमको टाइम लगा, प्राकृतिक के आकर्षण। योग में किसी को पेड़ पौधे दिखाते हैं, दिखाई देते हैं क्या? हाँ, प्रकृति, फिर हमने देखा प्रकृति है शरीर और पुरुष है आत्मा, ये पता चल। हाँ सर, वैभव, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ नहीं, वो सारी बात नहीं है, बस थोड़ा सम वो करने के लिए। उसमें 30 पॉइंट थे, 30 पॉइंट थे दो पैराग्राफ में। उसके बाद लास्ट में बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ। सारी चीजें साक्षी होके देखना है, बिल्कुल साक्षी होके, और साथी बाबा, साथी बाबा और बाप समान बनना है। इसमें तो बहुत सारी पॉइंट आ जाएंगे, बाप समान बनेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो एक प्यार की कहानी बताता हूं मैं, जो स्लोगन है आज का। एक बार हॉस्टल में था, खाना बना रहा था, खिचड़ी बना रहा था, उसमें कुकर में खिचड़ी जल गई, तो मैं कॉलेज के लिए निकल गया, जाते हुए सेंटर मैंने बाबा को बोल के निकला कि अब तो खिचड़ी जल गई है, अब तो हम आज आप ही खिलाओगे हमको। तो गए सेंटर में, बाबा कमरे में बैठा, बस बैठा रहा, पीछे से दीदी आई, आवाज बुलाया, उनने बोले नाश्ता की प्लेट रखी है आपकी, जाओ खा लो। तो ये हमने देखा कि वाइब्रेशन का असर होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, सारी चीजें होती हैं, ना किसी से कहना है और ना उत्साह रखना है कि बताना है, अनुभव बताना है हमको, महान आत्माओं का टाइम वेस्ट नहीं करना। कभी कभी हमको माइक चाहिए रहता कि हम बोले अपना अनुभव, एक्साइटमेंट, ये भी सूक्ष्म किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। किसी को आके बोल रहे हैं कि अनुभव सुनाना है, तो थोड़ा क्या तैयारी है, कितने लोग आए, किसको सुनने आए, किसके उद्देश्य से आए। इधर हमको भी चांस दिया तो किसी ने अपना टाइम गवा के हमको सुनने कोई नहीं आया इधर पे, कि हमको किसी ने सुनने कोई आया हो। आप बताइए कि आप लोग हमको सुनने आए थे क्या? नहीं। तो कभी कभी तो ये हुआ। उससे पहले जो हमारा खिचड़ी जलने का फिर हमने रीजन ढूंढा कि क्या था, तो हम भोग जो लगाते थे ना, ले बाबा खा ले कुकर में, तो उस दिन के बाद से थोड़ा सुधार कर लिया, कढ़ाई में बनाए ले बाबा खा ले, हमारे पास कोई नहीं, धुलाई करना पड़ता बर्तन। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। सत्यता की शक्ति, सच तो मिठो नच, देख लिया। अभी ये जो चुने हुए महावाक्य है, इसमें दो पैराग्राफ, उसमें जो एक मुरली है 28/11/81, ये मुरली जो है उसका टाइटल है कि आप पूर्वज हो और सर्व आत्माओं की आपसे आशाएं हैं। तो इस मुरली में बाप दादा मधुबन वालों से मुलाकात कर रहे हैं, और मधुबन वालों से मुलाकात करते हुए बाबा ने इतना नशा चढ़ाया है मधुबन वालों को, एक 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 टाइटल गिनाए हैं। आप महात्मा हो, आप मधुबन में रहने वाले मधु समान मधुर हो, झूले में झूलने वाले हो, फिर बाबा ने टाइटल दिया कि आप मास्टर टीचर हो, फिर बाबा ने कहा कि आप चलती फिरती लाइब्रेरी हो। चलती फिरती लाइब्रेरी हो, तो पूरा एक पेज डेढ़ पेज बाबा ने इतनी महिमा की है, इतना नशा चढ़ाया है। और फिर जो ये जो पॉइंट शुरू होता है कि सेवाधारी तो हो, स्नेही तो हो, लेकिन बाबा ने कहा सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक भल एक भरोसा है, और बाबा ने आगे शब्द यूज किया लेकिन। लेकिन अभी क्या करना है, तो बाबा ने कहा कि आपको मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को प्राप्त करना है, और उसके लिए बाबा ने बताया लाइट और माइट, जो अभी सुशील भाई जी ने एक्सप्लेन किया कि लाइट और माइट कैसे रहेंगे। तो इस मुरली में जो है बाबा ने बताया है कि आप ऐसी क्षमा बन जाओगे। अभी तो बाबा एक है क्षमा, और हम सब बच्चे क्या है, परवाने हैं, दूर दूर से आते हैं, मधुबन में आते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, लेकिन आप भी ऐसे बन जाओगे। बाबा ने कहा कि आपके भी इर्द गिर्द क्या होंगे, परवाने, लेकिन पहले कौन से, तो ये आबू वाले, आबू निवासी। बाबा ने कहा आज कुछ काम होता है, आपको उनके पास जाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो खुद आएंगे और बोलेंगे जी हुजूर क्या काम है, आप हमें बताओ। वैसे तो आज भी आते हैं मधुबन में, जब भी हम देखते हैं गवर्नमेंट वाले, मिलिट्री वाले भी, उनका कुछ कार्य की शुरुआत है, एक बार उनको कुछ रेस करवानी थी तो उन्होंने ओम शांति भवन के आगे ही नारियल तोड़ा था के। आज भी उनकी तरफ से रिगार्ड और रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन बाबा ने कहा कि आपको ऐसी स्टेज को प्राप्त करना है, कौन सी, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। और इस समय बाबा ने टाइटल जो इसके पहले दिए हुए, कौन से, कि मैं मास्टर टीचर हूं, मैं चलती फिरती लाइब्रेरी हूं। फिर अगला जो पॉइंट है उसमें बाबा ने कहा है कि अगली जो मुरली है, तन का और मन का समर्पण, इस मुरली की डेट है 25/12/69 की मुरली है। और इस 69 की मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर आपको अनासक्त बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि तन और मन को क्या समझना है, अमानत समझना है। तन और मन को जब अमानत समझेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, हाँ, ख्यानत नहीं होंगी, और हमारे पास दो शक्ति होगी, कौन सी, परखने की शक्ति होंगी और निर्णय करने की शक्ति होंगी। लेकिन ये दोनों शक्तियां कब आएगी? मन और बुद्धि जो है, हाँ, उसमें हम क्या रहेंगे? लाइट और माइट रहेंगे। तो लाइट और माइट, तो लाइट माना हल्का, यहां पर बताया गया है। और बाबा ने कहा कि ये फरिश्ते की कैटेगरी है। फरिश्ता जो होता है वही हल्का होता है। तो फरिश्ता माना, बाबा ने बताया यहां पर, लाइट माना चार बातों में, मन से लाइट, मन के बाद वाणी में, फिर कर्म में लाइट, और फिर संबंध संपर्क में लाइट। संबंध और संपर्क में लाइट। तो यहां चारों बातों में लाइट होंगे तब क्या होगा? हम फरिश्ता बनेंगे। माना यहां पर बाबा ने बताया है कि दूसरों के संकल्पों को रीड करने की बात है। सामने वाला, जब दुनिया में दो शब्द यूज किए जाते कि ये जनरेशन गैप है, और कहते हैं कि ये क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। तो आपस में अनबन है तो डिपार्टमेंट में कैसे काम कर पाएंगे? कर नहीं पाएंगे। और क्या बढ़ते जाएंगे? टकराव बढ़ता जाएगा, हाँ, दूरियां बढ़ती जाएंगी, फिर एक दूसरे के अवगुण दिखते जाएंगे। तो फिर ये बातें ना हो, इसलिए बाबा ने सिर्फ संबंध संपर्क में हल्का नहीं, तो और बाबा ने चौथी स्टेज वो बताई। लेकिन फर्स्ट स्टेज क्या है? मन। मन से हमें कैसे हल्का रहना है, लाइट रहना है, उसके लिए बाबा ने क्या बताया कि सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान की स्मृति रहे कि मैं किसकी संतान हूं, सर्वशक्तिवान हूं। तो सर्वशक्तिवान कैसे बनना है? बाद में लाइट माइट की स्टेज, और फिर बाद में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। अभी दूसरों को कब परख सकेंगे? जब बाबा ने कहा कि खुद का जो बिस्तरा है संकल्पों का, वो समेटा हुआ हो। ये अष्ट शक्ति के कैलेंडर में दो नंबर की शक्ति है। पहली कौन सी है? विस्तार को संकीर्ण करने की, वहां पे कछुआ दिखाया हुआ है। और ये है पैकअप, समेटने की शक्ति। लगभग सेम दिखता है लेकिन इसमें अंतर तो है। कछुआ अपने आप को क्या करता है? सिकुड़ लेता है। और यहां पर क्या करना है? पैकअप करना है। तो ये जो विस्तार है खुद के संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का, हम खुद में ही इतने उलझे हुए होंगे तो सामने वाले को समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि सामने वाला आता है, हमारी ऐसी स्टेज हो, हम इतने हल्के हो, सामने वाला आते ही हम उसके संकल्पों को रीड करें और उस अनुसार उसके साथ व्यवहार करें, उस अनुसार हमारे निर्णय हो, न खुद का टाइम वेस्ट हो न सामने वाले का टाइम वेस्ट। हाँ, समय अनुसार शक्ति रूप भी बनना है, सिर्फ स्नेह रूप इतना भी नहीं बनो कि कोई आपका टाइम वेस्ट करे, इतना भी आप भोला नहीं बनो। जहां शक्ति रूप बनना है वहां शक्ति रूप भी बनना है, लेकिन वो भी जरूरी है। तो बाबा ने कहा है यहां पर लाइट भी बनना है और माइट भी बनना है। हल्का तो बनना है, ऐसे नहीं कि कोई आपको उड़ा दे, माइट रूप बनना है। अंगत समान आपको पैर लगा के खड़ा भी होना है, एक बार मुड़ के भी देखना है कि फिर बार बार हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, ओम शांति।
यहाँ जो संगठन देखा उसको लेकर के एक छोटी सी कुछ पंक्ति ऐड किया है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल संगठन है जो मैंने आज तक नहीं देखा। कम लोगों में, कोई कुछ नहीं, सब अपने आप से दूसरों को सिखा रहे हैं। और जैसे आज बाबा की मुरली है स्नेह को लेकर के, तो पहले बाबा को सरेंडर करके फिर वो सुनाऊंगी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 5 मिनट लूंगी। आज की मुरली स्नेह पे है, बाबा से सच्चा स्नेह।
आप इधर ही सुनना, इधर भी क्या?
तो बाबा ने, बाबा के सरेंडर करके, ये सबकी वाणी है, आप सबके दिल में भी ये बातें आती होंगी। साजन साथी माँ बाप है तू मेरा, तेरे संबंध से जो सुख मिलता वो मिलता नहीं कहीं दोबारा। तेरी यादों के स्पर्श से मन का तार तार पुलकित होता, तू आता है हर दिन, ऐसा एहसास होता है हर एक दिन। तेरी मुरली के शब्दों से होती है रोज मुलाकात, मिलती अनहद तृप्ति पर मिटती नहीं दिल की प्यास। दिल के जर्रे जर्रे से आवाज निकलता, कौन होगा मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा भाग्यवान। तेरी दृष्टि से मिलती अथाह शक्ति, जो यादों में तू बस तू, ना बचा यादों में अब कोई। जान से ज्यादा प्यारा है, साथी है, सहारा है, हर एक रूह का हम सफर है तू। बाबा तू ना मिलता मुझे तो क्या वजूद रह जाता मेरा, इस मेरे में कशिश है इतनी, जो सारी कायनात की खुशी भी फीकी पड़ जाए, तू इतना बड़ा सहारा है, तू इतना बड़ा सहारा है। तू है साथी, तू है सच्चा आधार मेरा, साजन साथी माँ बाप है तू मेरा, तेरे संबंध में जो सुख मिलता वो मिलता कहीं नहीं दोबारा, कहीं नहीं दोबारा। अनोखी बगिया, छोटी सी है ये फूलों की बगिया, बगिया का माली बड़ा हसीन स्वयं भगवान, बनाया इंस्ट्रूमेंट बड़ा अनोखा, यहाँ हुआ टचिंग पांडव सेना को, किया मिलकर सब रॉयल कोशिश, एक से एक ब्रह्मा के बच्चे, गुणों और शक्तियों में शिव बाबा जैसे, थोड़ी सी झलकियां देखते इन महारथियों की आज। ओम शांति।